नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति पर चिंता व्यक्त की, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। अमरीकी सेना ने ईरान पर लगातार सातवीं रात हमले किए, ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मैक्सिको के दक्षिणी तट के निकट 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील भी की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत लगाए गए प्रतिबंध और उसके नेताओं की गिरफ्तारी पर भी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। चाबहार पर कथित हमले के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि बंदरगाह के टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत साहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत एस्टोनिया सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है।
Working to strengthen each other's
हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा तीन दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने चेन्नई में कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईआईटी मद्रास के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर आईआईटी मद्रास जांजीबार की स्थापना शैक्षिक उपलब्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये इस साझा विश्वास को दर्शाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और उत्कृष्टता को कभी भी भौगोलिक सीमाओं में बांधा नहीं जाना चाहिए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी सेना के ईरान पर हमले जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के टूटने के बाद लगातार 7वीं रात ईरान पर अमरीकी सेना ने हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ईरानी सैन्य क्षमताओं को लगातार कमजोर करने के उद्देश्य से किए गए थे। ईरानी मीडिया ने बताया कि अमरीकी सेना के हवाई हमले के कुछ ही समय बाद कल रात बंदर अब्बास और सिरिक दक्षिणी बंदरगाह शहरों में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। ईरान ने कहा कि उसने ड्रोन हमले में जॉर्डन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मेक्सिको के दक्षिणी तट के निकट 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। इसे देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भूकंप के बाद किसी नुकसान की खबर नहीं है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चेन यू फी के खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। इससे पहले सिंधु को क्वार्टर फाइनल में भी वॉकओवर मिला था, जब जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा मुकाबले से हट गई थी। अब पीवी सिंधु जापान ओपन के महिला सिंगल्स खिताब के लिए फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
आज नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती पर मानवता, शांति और समानता के लिए उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति पर चिंता व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। अमरीकी सेना ने ईरान पर लगातार 7वीं रात हमले किए। ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मेक्सिको के दक्षिणी तट के निकट 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। सुनामी की चेतावनी जारी की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।